है, ये राम कथा है, मोबाइल कथा नहीं। ब्रजहरि प्रभु हमें कई वर्षों से बुलाते आए हैं इस राम कथा के लिए, किसी न किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और प्रसन्नता की बात भी है कि आप सबके बीच में मैं भगवान श्री रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करने जा रहा हूं। भगवान की कथाएं वैसे तो बहुत मधुर होती हैं, बहुत पावन होती हैं और एक योग्य व्यक्ति ही इन कथाओं को कर सकता है। यद्यपि हम योग्य तो नहीं है, फिर भी इस सिद्धांत पर विश्वास करके कि जो व्यक्ति पूर्व आचार्यों के वाणी को दोहराता है बिना कोई मिलावट किए, तो उसकी वाणी भी योग्य हो जाती है, श्रवणीय हो जाती है। इस बात पर विश्वास करके हम कुछ श्री रामचंद्र के बारे में कहने का साहस कर रहे हैं। वैसे भगवान की कथाएं, इनको सदैव हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह विशेष करके भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत ही उपयुक्त रास्ते हैं। भगवान की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का ध्येय है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा मूल्यवान मनुष्य जीवन व्यर्थ जाएगा। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोपाद्येति श्रम एव हि केवलम्। वैसे हमारे जीवन में हमारे अनेक कर्तव्य होते हैं और इन कर्तव्यों का पालन अवश्य हमें करना चाहिए, परंतु इन कर्तव्यों के पालन करने पर भी यदि हम भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम, इनके कथाओं के प्रति रति या रुचि उत्पन्न नहीं करते हैं तो हमारा सारा जो श्रम है परिश्रमो व्यर्थ जाएगा। श्रम एव हि केवलम्, श्रम का इस संदर्भ में अर्थ है व्यर्थ के कार्य। न उत्पादयेत् यदि रतिम्, तो यदि ऐसे भगवान की कथाओं में हमारी रति उत्पन्न न हुई तो हमारा मनुष्य जीवन किस काम का, क्या लाभ है। श्रीमद् भागवत में सूत गोस्वामी भी बताते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अतः पुंभिर् विजयश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए यदि हम भगवान श्री हरि को नहीं प्रसन्न करते हैं तो फिर जीवन का क्या मूल्य, का क्या फायदा है। तो अंततः हमें भगवान को ही प्रसन्न करना है। अगले ही श्लोक में फिर सूत गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में बताते हैं, तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयस् पूज्यस्य नित्यदा। वो कहते हैं कि इसलिए, अतः तस्मात् मतलब क्योंकि अब भगवान को प्रसन्न करना हमारा जीवन का ध्येय है, तो एकाग्र चित्त से हमें भगवान श्री हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसको पूजना चाहिए। यही जीवन की सफलता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म लेना होगा, भगवान की विस्मृति की अवस्था बढ़ती जाएगी। पद्म पुराण में भी बताया गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। अनेक योगी जन होते हैं जो संसार में रमण नहीं करते हैं, रमन्ते योगिनः, तो ये योगी जन रमण करते हैं किस चीज में? अनन्ते, वो जो कि अनंत है, उस आनंद में जो कि सत्य का आनंद है, सत्यानंदे चिदात्मनि, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका आनंद रहता है, उनको रमण करते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। और क्योंकि उनके सेवा के ध्यान के विषय परम सत्य होते हैं जिनमें कि वो रमण करते हैं, इसलिए परम सत्य को राम कह के संबोधित किया जाता है। इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। तो राम शब्द का अर्थ क्या है? वो परम ब्रह्म जिनमें योगी जन रमण करते हैं, जिनकी सेवा करके, जिनके ऊपर ध्यान करके, जिनके बारे में श्रवण कीर्तन आदि करके योगी जन परम आनंद का अनुभव करते हैं, वो परम सत्य श्री राम है। तो ऐसे परम सत्य श्री राम की कथा अब हम करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। रामायण की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, भारत में तो बच्चा बच्चा राम की कथा जानता है। शायद मेरे इस वाक्य को बदलना होगा, कहना होगा कि जानता था। आजकल तो बच्चे केवल टेलीविजन के विज्ञापन जानते हैं, सिनेमा के गाने जानते हैं, भगवान की कथाओं को नहीं जानते हैं। और इसका कारण ये है कि उनके माता पिता भी नहीं जानते हैं, और वो भी टेलीविजन के सामने ही बैठते हैं, तो वे बच्चों को संस्कार कैसे मिले? जब पहले बच्चे बच्चे जाना करते थे कि श्री राम की लीलाएं कौन सी हैं, श्री कृष्ण की लीलाएं कौन सी हैं, तो भाग्यवश परिस्थिति काफी बदल गई है। यदि राम लीला की बात की जाए तो अधिकतर लोग इतना तो जानते हैं कि श्री राम को वनवास में जाना पड़ा, सीता देवी का अपहरण हुआ रावण के द्वारा, फिर हनुमान आदि का साथ लेकर श्री राम ने रावण का वध कर दिया, विजय प्राप्त किया रावण की सेना के ऊपर, सीता देवी को वापस अयोध्या में ले आए और वहां राम राज्य हुआ। यहां तक प्राय सभी लोग जानते हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग जानते हैं। अभी आजकल के हिसाब से देखा जाए तो शायद वो भी हो या ना हो पता नहीं। इसलिए हमने सोचा कि वाल्मीकि रामायण की कथा संक्षेप में सुनाने का प्रयास करें। आप अवश्य इस बात को मानेंगे कि वाल्मीकि रामायण या श्री राम कथा इतनी विशाल है, भले 4-5 दिनों में कैसे पूर्ण किया जा सकता है, संभव तो नहीं है, फिर भी संक्षिप्त रूप में हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि वाल्मीकि रामायण ही क्यों? हाँ, वाल्मीकि रामायण क्यों? वैसे तो अनेक रामायण उपलब्ध हैं और हुए हैं इतिहास में, वैसे संस्कृत भाषा में भी अनेक रामायण हैं, भूषुंडी रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, ऐसे अनेक रामायण हैं, और भारत के प्राय हर एक भाषा में रामायण उपलब्ध हैं। मलयालम में रामचरित है, तमिल में कंब रामायण है, तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण है, कन्नड़ भाषा में भी है, कृतिवास रामायण बंगाल में है, नेपाली भाषा में, हर एक भाषा में है, गुजराती में, पंजाबी में, यहां तक कि फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में भी है। उर्दू में है पोथी रामायण, फारसी भाषा में है दास्तान ए राम ओ सीता, रसनामा, ऐसे फारसी भाषा में भी रामायण उपलब्ध है। भारत के विभिन्न भाषाओं में और विदेशों में भी, थाईलैंड में रामकियन नाम से रामायण जाना जाता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, जगह जगह रामायण की कथा फैली हुई है और अलग अलग नामों से लोग इस ग्रंथ को जानते हैं। शायद आप में से कई भक्त नहीं जानते होंगे कि थाईलैंड की राजधानी 200 वर्ष पूर्व तक थी अयोध्या, अयोध्या अर्थात अयोध्या। और पिछले 200 वर्षों में ही 9 ऐसे राजा हुए हैं थाईलैंड के जिनके नाम राम था, राम एक, राम दो, राम तीन, ऐसे 9 राम थे। रामकियन वहां रामायण का नाम ऐसे है। तो खैर, अलग अलग प्रांतों में समय के कारण अब ये कथाएं बदल गई हैं थोड़ी बहुत, और देखा जाता है कि थोड़ा परिवर्तित रूप धारण किया है इन रामायणों ने अलग अलग स्थानों में, लेकिन मूल बात तो वही है, मूल कथा वही है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इन समस्त रामायणों के जो मूल हैं वो है श्री वाल्मीकि मुनि का रामायण, इसलिए ये अधिकृत और मूल रामायण समझा जाता है। अन्य जितने भी रामायण हैं वो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, चाहे वो तुलसीदास का रामचरितमानस हो या तमिलनाडु का कंब रामायण हो। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण से कथा सुनना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और लाभदायक भी है। वैसे यहां जो पृथ्वी लोक पर वाल्मीकि रामायण उपलब्ध है उसके केवल 24,000 श्लोक हैं। अब केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया हमने? वैसे श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं, महाभारत के 1,00,000 श्लोक हैं और वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक। परंतु पुराणों में ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मलोक में 100 करोड़ श्लोक वाला रामायण उपलब्ध है। ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की कथाएं असीमित हैं, भगवान स्वयं असीमित हैं, उनकी लीलाएं असीमित हैं, तो उनकी कथाएं भी असीमित हैं, उनके अंश शेष अवतार भी अनादि काल से भगवान की कथाओं का वर्णन करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, परंतु अभी तक भगवान की कथाओं के अंत तक पहुंचे नहीं है और नहीं वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि भगवान की कथाएं चलती रहती हैं निरंतर, शाश्वत रूप से भगवान की लीलाएं विद्यमान रहती हैं। तो यदि किसी दूसरे लोक में 100 करोड़ श्लोक वाला रामायण उपलब्ध है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहां पर जो वाल्मीकि रामायण हमारे उपलब्ध है उसमें प्रमुखतः 6 कांड हैं और 7वां भी जुड़ा जाता है। वाल्मीकि जी ने ऐसे विभाजन किया है रामायण का, पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है युद्ध कांड और एक 7वां कांड भी जोड़ा जाता है उत्तर कांड। तो कुल मिलाकर ऐसे 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण के। वाल्मीकि रामायण के पठन के लिए वैसे तो कर्म कांड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनेक नियम हैं, विधियां हैं, अमुक समय पे इसका पाठ करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए, और तरह तरह के विधियों का वर्णन है। वैसे कर्मकांड के पथ में भक्तों को वैसे विशेष रुचि नहीं होती है, क्योंकि भक्त लोग केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से। वो भगवान की सेवा से, भगवान की भक्ति से कोई भौतिक लाभ नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जबकि जब नरसिंह देव भगवान से निवेदन करते हैं कोई वरदान मांगने के लिए, कि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं आपसे व्यापार करने नहीं आया, तो भक्ति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्मकांड भी एक प्रकार का व्यापार है भगवान के साथ में। अधिकृत है, क्योंकि वो वैदिक शास्त्रों पर आधारित है, परंतु विशेष करके कर्मकांड उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से शुद्ध जीवन नहीं बिता सकते हैं, जो कुछ चाहते हैं भौतिक भगवान से, परंतु भगवान के भक्तों को जो कम से कम शुद्ध भक्त होना चाहते हैं, भले वो शुद्ध भक्त अब न भी हो, परंतु जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय बना लिया है कि मुझे भगवान का शुद्ध भक्त होना है, ऐसे लोग कर्मकांड की पद्धति में ही मार्ग में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे बताया जाता है कि यदि कोई संतान को प्राप्त करना चाहता है तो उसे बाल कांड पढ़ना चाहिए, यदि किसी को समस्त इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो सुंदर कांड पढ़ना चाहिए, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो उसे युद्ध कांड पढ़ना चाहिए। तो ऐसे तरह तरह के पद्धतियां हैं, परंतु कृष्ण भक्त जो होते हैं, राम भक्त जो होते हैं, हरि भक्त जो होते हैं, वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करते हैं, कुछ चाहते नहीं है, और इसी में वो आनंद लेते हैं। तो अभी हम केवल सुनेंगे भगवान की कथा, भगवान में आनंद प्राप्त करने के लिए, और किसी कारण से नहीं, हम कुछ चाहते नहीं है भौतिक, केवल यही श्री रामचंद्र के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि उनके चरण कमलों के प्रति हमें आकर्षण उत्पन्न हो, उनकी कथाओं के प्रति रति या आसक्ति उत्पन्न हो, उनके प्रति भक्ति या प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हो, क्योंकि श्रवण और कीर्तन करने से स्मरण होता है, और स्मरण सतत ऐसे करते रहने से प्रेम या भक्ति उत्पन्न होती है। तो इसलिए हमारे कथा सुनने में और बोलने में उद्देश्य एक ही है, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति हृदय में जागृत करना। वाल्मीकि जी की तुलना एक कोयल से की गई है, जो कि कविता रूपी वृक्ष की एक शाखा पर आरूढ़ हुए हैं और बड़े मधुर ढंग से, मधुर अक्षरों से श्री राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। तो मैं नमन करता हूं वाल्मीकि जी को, जो कि कोकिल है या कोयल है, आरोही कविता शाखा जो चढ़े हैं कविता रूपी वृक्ष के शाखा के ऊपर और बहुत मधुर ढंग से कूज रहे हैं, जैसे कि कोयल कूजते हैं। कूजंतम मधुरम मधुराक्षरम, बड़े मधुर ढंग से वो कूज रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं, और उन्होंने रचना भी की है मधुर अक्षरों से, मधुरम मधुराक्षरम। तो जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को भक्ति भाव से सुनता है उसे ये कथाएं बहुत रसमय लगती हैं, बहुत मधुर लगती हैं, परंतु जिनके हृदय में इनके प्रति रुचि नहीं है, वो भगवान को नहीं चाहते हैं, वो ऊब जाते हैं इन कथाओं से, सुनना नहीं चाहते हैं। निवृत्त तर्षित गीयमाना भवोषदा श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादा उमा विरचित बिना पशुनाथ। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज कहते हैं कि परंपरागत व्यक्ति को भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक शब्द के अनेक अर्थ हैं, जिनका वर्णन या जिनका गुणगान उत्तम या श्रेष्ठ श्लोकों के द्वारा किया जाता है, वो है उत्तम श्लोक। या जो श्लोक स्वयं उत्तम है, कोई भौतिक वाणी नहीं है, भौतिक शब्द नहीं है, ये उत्तम है अर्थात ये दिव्य है। तम अर्थात अंधकार, ये भौतिक जगत से संबंधित। उत्तम अर्थात जो तामसिक नहीं है या तामसिक जगत से, भौतिक जगत से परे है, ये भी उत्तम श्लोक है। और जिसका श्रवण करने मात्र से व्यक्ति, सुनने वाला, वो भी इस भौतिक सृष्टि के परे हो सकता है, ये है उत्तम श्लोक। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसे उत्तम श्लोक की कथाओं का श्रवण करना भवोषधि श्रोत्र मनोभिरामा, ये भव रोग के लिए बहुत उपयुक्त औषधि है। इस संसार में अनेक रोग हैं, बीमारियां हैं, परंतु सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो है भव रोग। भव रोग वो रोग है जिसके द्वारा हमें बारंबार जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, बारंबार रोगी होना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है। तो इस भव रोग के लिए, जो कि सबसे भयंकर रोग है, इसको यदि हमें पार करना है तो भगवान की कथाओं को हमें श्रवण करना है। भव औषधाच श्रोत्र मन अभिरामात। और जब इन कथाओं का श्रवण हम करते हैं तो मन और कानों को बड़ा अच्छा लगता है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे है भगवान की कथाएं। तो भगवान की कथाएं और विशेष करके वाल्मीकि जी द्वारा विरचित जो रामायण की कथा है या श्रीमद् भागवत की कथाएं हैं, ये सब सत्य हैं। ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, कोई दंत कथा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि आजकल आप किसी भी पुस्तकालय में जाएं, पुस्तक की किताब की दुकान में जाएं, आप उनसे पूछिए। कई बार हमारा अनुभव ऐसे हुआ है, कहीं जाके हम पूछते हैं हमें ये पुराण चाहिए, ये ग्रंथ चाहिए, तो हमें पुस्तकालय के या उस दुकान के उस भाग में ले जाते हैं जहां लिखा हुआ होता है माइथोलॉजी। अंग्रेजी में माइथोलॉजी है शब्द, हिंदी में दंत कथा। काल्पनिक कथाएं जो होती हैं उनको माइथोलॉजी कहते हैं, परंतु ये वेद वाक्य से अलग नहीं है, इसलिए ये सत्य है। तो इसी भावना से इन कथाओं को हमें सुनना चाहिए। यदि हम ये सोचेंगे कि ये दंत कथा है, केवल कोई नैतिकता की स्थापना करने के लिए ऋषि मुनियों ने ऐसी कथाओं की रचना की है, या केवल एक पुण्य मनोरंजन का रास्ता है, तो ऐसा ठीक नहीं है। इस भावना से यदि हम ग्रंथों को या इन कथाओं का श्रवण करेंगे तो उतना पूरा लाभ नहीं मिलेगा, निश्चित ही हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। तो फिर आइए शुरू करते हैं संक्षेप रूप में वाल्मीकि रामायण की कथा का श्रवण और कीर्तन। वैसे तो वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पे अपने आश्रम में विराजमान थे, अपने शिष्यों के साथ में बैठे हुए थे, बड़ा शांत वातावरण था। निसर्ग का सौंदर्य खिल रहा था, ऐसे ही सात्विक वातावरण में ऋषि मुनि अनादिकाल से तप करने के लिए जाते थे। आजकल तो ऐसे कोई वातावरण मिलता नहीं है, इसलिए आध्यात्मिक जीवन का पालन करना भी बहुत कठिन हो गया है आजकल। तो वाल्मीकि मुनि जब बैठे थे वहां पर, तो अचानक उनके गुरु नारद जी वहां पर पधारे। नारद जी का नाम तो आप सबने अवश्य सुना है। तो जैसे ही नारद मुनि आए, वाल्मीकि मुनि खड़े हो गए, उन्होंने स्वागत किया नारद जी का, अच्छी तरह से आसन पर बिठाया। और वन में रहने वाले लोग किन पदार्थों से स्वागत कर सकते हैं किसी विशेष अतिथि का, वैसे ही उन्होंने स्वागत किया। कंदमूल हैं, फूल हैं, फल हैं। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वाल्मीकि जी ने फिर उनसे प्रश्न किए। प्रथा ये है कि जब हम किसी वरिष्ठ साक्षात्कार साधु के सानिध्य में हैं, तो कोई प्रश्न करने चाहिए, लेकिन किस तरह के प्रश्न? ऐसे प्रश्न जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। हमारे व्यवसाय में हम कैसे प्रगति करें, भौतिक समस्याओं का हल कैसे निकालें, इन चीजों के लिए नहीं। तो वाल्मीकि जी जानना चाहते थे नारद जी से कि क्या इस जगत में कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति है, और वो आदर्श व्यक्ति ऐसे हो जो सब गुणों से संपन्न हो, जो गुणवान हो। आजकल दुर्भाग्यवश लोग केवल धनवान होना चाहते हैं, गुणवान होना नहीं चाहते। और यही एक संस्कृति बन गई है। बचपन से ही बच्चों को यही सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनके दिमाग में यही बात दी जाती है कि तुम्हें बड़े होकर बहुत पैसे कमाने हैं, बड़ा आदमी बनना है, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है, तुम्हारे पास गाड़ी बंगले बहुत कुछ होने चाहिए। पढ़ाई के कारण भी यही होते हैं, पढ़ाई नहीं करोगे तो अच्छी डिग्री नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं कमा पाओगे। लेकिन बिरला ही ऐसे कोई माता पिता मिलते हैं जो अपने बच्चों को गुणवान बनाना चाहते हैं। देखिए, धन पाना या नहीं पाना ये हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर रहता है। हमारे कपाल में जितना धन लिखा है उतना ही हमें मिलकर रहेगा, उससे एक पैसा ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि केवल धनवान बनने के लिए हमें क्यों प्रयास करना चाहिए, गुणवान होना चाहिए। इसलिए वाल्मीकि जी जानना चाहते थे कि ऐसे कोई गुणवान व्यक्ति कौन है यहाँ, साथ साथ में जो वीरवान है, जो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवचनी है। आजकल कलयुग में तो बड़ी बात है, सत्यवचनी व्यक्ति कहाँ पाया जाता है आजकल, जो दृढ़ वृत है, विद्वान है, सबका हितैषी है, कोई पक्षपात नहीं करता है कि इनके प्रति हितैषी है, दूसरों के प्रति नहीं है। नहीं, जो सबके प्रति हितैषी है, जो समर्थ है, प्रियदर्शन है, दिखने में भी सुंदर हो, चरित्र से भी सुंदर हो, अपने बोलने में भी बहुत मधुर हो, आत्मवान जित क्रोध त्युतिमान, जिसने अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया हो, क्रोध पर जीत कर लिया हो, जो बहुत प्रकाशमान हो, अनसूय कहा, जिसके हृदय में बिल्कुल ईर्ष्या न हो अन्यों के प्रति, तो ऐसे वाल्मीकि जी ने अनेक गुणों का उल्लेख किया कि है ऐसे कोई व्यक्ति इस जगत में जो इन समस्त गुणों से संपन्न हो, युक्त हो। वैसे देखा जाए तो हमें लगे कि नहीं, ये तो केवल एक सपनों की बात है कि ऐसे कोई व्यक्ति मिले, परंतु नारद जी ने कहा नहीं है, इस समय भी वो व्यक्ति है। राजा इक्ष्वाकु के वंश में, अर्थात सूर्य वंश में एक राजा है जो इस समय भी राज्य कर रहे हैं, और उनका नाम है राम। और नारद जी ने उनके गुणों का उल्लेख करना शुरू कर दिया एक के बाद एक। जितने गुणों का उल्लेख वाल्मीकि जी ने किया था उनसे कहीं अधिक वर्णन नारद जी ने कह दिया। नारद जी ने 65 से ऊपर गुणों का उल्लेख किया और कहा कि ये है श्री राम। वैसे श्री राम के बारे में क्या कहा जाए, जितना भी हम कहें उतना कम होगा। वैसे समस्त सद्गुणों के मूर्तिमान स्वरूप हैं श्री रामचंद्र, समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के भंडार हैं, असीमित शक्तियों के स्वामी हैं, उनका शरीर सुंदर है पूर्ण चंद्रमा के समान, शरीर का हर एक अंग हर एक अवयव सुंदर है, उनकी सुंदर आंखें हैं, दिखने में चरित्र में बड़े गंभीर हैं, उनकी बुद्धि भी बड़ी गहरी है, वाग्मी है अर्थात बहुत मधुर वाणी के हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं, हिमालय की तरह धैर्यवान हैं, पृथ्वी की तरह सहनशील हैं, पूरी तरह से शास्त्रों से परिचित हैं, धनुर्विद्या से परिचित हैं, अपने भक्तों के जो कि उनके शरण में आए हैं उनके रक्षक हैं, अपने शत्रुओं की हत्या करने वाले हैं। ऐसे एक के बाद एक नारद जी इन गुणों का वर्णन करने लगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर एक गुण की व्याख्या हम करें, क्योंकि नारद जी ने बहुत गहराई में किया है उल्लेख करते करते। फिर नारद जी ने आगे चल के सारी रामायण की कथा संक्षिप्त रूप में सुना दी वाल्मीकि मुनि को। शुरुआत हुई उनका जन्म के बाद, फिर वनवास में जाना, कैकेयी ने दशरथ महाराज से वरदान मांगे जिनके फलस्वरूप श्री रामचंद्र को सीता देवी और लक्ष्मण जी के साथ में वनवास में जाना पड़ा 14 वर्ष। फिर वहां पे गुह निषाद द्वारा सेवा, सारे अयोध्या के निवासी वहां तक पहुंचते हैं, आगे चल के चित्रकूट में पहुंच जाना, भरत का वहां आगमन होना, फिर आगे चल के निराश होकर भरत का वापस लौट जाना, नंदीग्राम से श्री राम की पादुकाओं को सिंहासन पर बिठा के नंदीग्राम में रह के श्री राम का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य संभालना, श्री राम का आगे चित्रकूट से दंडकारण्य जाना, वहां शूर्पणखा का दमन करना, जनस्थान में 2 घंटों में 14,000 असुरों का वध करना, आगे चलते चलते सीता देवी का अपहरण रावण के द्वारा होना, शोकग्रस्त अवस्था में सीता देवी को ढूंढते ढूंढते कबंध आदि राक्षसों का सामना करना, और फिर शबरी के पास पहुंच जाना किष्किंधा में, हनुमान से मिलना, हनुमान के द्वार फिर सुग्रीव से मिलना, मैत्री का संबंध स्थापित करना सुग्रीव से, आगे चल के वानर सेना के साथ में रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना, और फिर सीता देवी को वापस ले आना अयोध्या, पहले नंदग्राम और फिर अयोध्या। और अब तक जब नारद मुनि वर्णन करते हैं तो भूत क्रिया का प्रयोग करते हैं, भूत क्रिया अर्थात पास्ट टेंस, कि जो हो चुका है ऐसे ऐसे हुआ था। फिर इस घटना के बाद जब श्री रामचंद्र वापस लौट के आए हैं अयोध्या और अब राज शुरू कर रहे हैं तो उस समय से वो भविष्य क्रिया का प्रयोग करते हैं अर्थात फ्यूचर टेंस। तो इसका क्या मतलब होता है कि जिस समय नारद जी वर्णन कर रहे थे राम कथा का वाल्मीकि जी को तमसा नदी के तट में, तो श्री राम उस समय थे अयोध्या में, वो राज कर रहे थे। और वाल्मीकि जी ने इस घटना के थोड़े समय बाद ही रामायण की रचना की। तो इसका मतलब है कि वाल्मीकि जी ने जिस समय रामायण की रचना की उनमें से थोड़ी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी और अनेक लीलाएं आने वाली थी। नारद जी वाल्मीकि जी को बताते हैं कि इसके बाद राम राज्य शुरू होता है और 11,000 वर्षों तक श्री रामचंद्र राज्य करते हैं। वैसे जब श्री राम वनवास में गए थे तो उनकी आयु 27 वर्ष थी। युवराज घोषित होने ही वाले थे। वैसे प्राय जनता जो है प्रजा स्वीकार कर चुकी थी कि श्री राम अब युवराज हो गए हैं, परंतु ऐन वक्त पर कैकेयी ने अपने वरदानों को मांगकर राम को वनवास में भेज दिया। तो 14 वर्ष श्री राम वनवास में रहे। उस समय उनकी आयु 27 वर्ष थी। तो जब वो अयोध्या में आए तो केवल 40 से थोड़े अधिक वर्ष की उनकी आयु थी उस समय। लेकिन उसके बाद में फिर वो वहां रहे 11,000 वर्ष। वहां उन्होंने राज्य किया। राम राज्य का वर्णन नारद जी करते हैं और बताते हैं कि उस समय अयोध्या के निवासियों को या राम राज्य में किसी की कोई बीमारियां नहीं हुआ करते थे, न किसी को कोई मानसिक तनाव हुआ करता था। जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, सतीता का गुण उनमें बहुत प्रधान था, कोई विधवा नहीं हुआ करती थी। जो पुण्यता दिखाई पड़ती थी वहां, जो लोगों में सुख दिखाई पड़ता था, वो सतयुग के अलावा और कभी नहीं दिखाई पड़ता था। परंतु श्री राम के कारण अब सत्युग का वातावरण यहां त्रेता युग में भी आ गया था। साथ साथ में प्रजा को किसी भी चीज का डर नहीं था, न चोरों का डर, न बीमारी का डर, न मृत्यु का डर, न बुढ़ापे का डर, न किसी चीज के अभाव का डर। प्रकृति प्रचुर मात्रा में प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ण करती थी, में सक्षम थी। सारे शहर, गांव, नगर आदि भरे हुए थे धान्य से, फलों से, सब्जियों से, तरह तरह की चीजों से। लोग बहुत ऐश्वर्यशाली रहा करते थे, एक दूसरे से द्वेष नहीं करते थे, श्री राम से बहुत प्रेम करते थे। तो यह है राम राज्य। आजकल भी देखा जाता है कि कई बार लोग राम राज की बात तो करते हैं, राम राज में जैसे लोगों का जीवन हुआ करता था उस तरह का जीवन वो चाहते हैं, परंतु श्री राम के बिना। तो ये कैसे संभव है? श्री प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हम केवल हमारे सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं बनाएं, समाज में हम सुख शांति चाहें, परंतु भगवान को केंद्र बिंदु न बनाएं, केवल भोग धन आदि को केंद्र बिंदु बनाएं, भगवान को बीच में से हटाएं, तो फिर राम राज्य कैसे हो सकता है? संभव नहीं है। जितने भी हम योजनाएं बनाएं, जितना भी हम प्रयास क्यों न करें, यदि हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, इनको हमारे समाज का, देश का, विश्व का, परिवार का केंद्र बिंदु नहीं बनाएंगे तो सुख समृद्धि की कोई संभावना नहीं रहेगी। और यदि थोड़ी बहुत समृद्धि, संपत्ति आदि आ भी जाए, उससे केवल विनाश ही होगा। आजकल देखा जाता है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो थोड़ा बहुत सुखी है, हालांकि मन में लालसा रहती है। जिनके मन में कोई आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं है उनकी ये लालसा रहती है कि मुझे भी करोड़पति बनना है, इसलिए कौन बनेगा करोड़पति ऐसे कार्यक्रम बहुत ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, लोग यही सब देखते हैं। और जो करोड़पति बन गए हैं वो अरबपति बनना चाहते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जीवन शैली हमें बदलनी है, जीवन समाज का आधार बदलना है। अब अर्थव्यवस्था ही प्रधान हो चुकी है, परंतु अर्थव्यवस्था प्रधान नहीं है। प्राधान्य हमें देना चाहिए आध्यात्मिक जीवन को। आध्यात्मिक जीवन यदि हमारे जीवन का बुनियाद बन जाए, आधार बन जाए, तो अर्थव्यवस्था तो क्या, हर चीज का संतुलन हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में प्रकृति हमें हर एक चीज प्रदान करेगी। तो राम राज का जीवन हमें चाहिए, तो भगवान श्री राम या श्री कृष्ण को हमें केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। तो खैर, वाल्मीकि मुनि ये सारी बातें सुनी, आश्चर्यचकित होकर नारद जी वहां से चल पड़े। आकाश पथ से जैसे आए थे वैसे ही चले गए, और उधर गहरी सोच में पड़ गए वाल्मीकि जी। वो सोच रहे थे कि अब श्री राम के बारे में हम कैसे वर्णन करें। नारद जी ने तो हमें बहुत कुछ बताया है, और कहा भी है हमसे कि हमें वर्णन करना चाहिए, तो कैसे वर्णन करें। तो गहरी सोच में ऐसे नारद वाल्मीकि जी पड़े थे। उस समय जैसे अपने शिष्यों के साथ, विशेष करके भरद्वाज हैं, उनके साथ में तपसा नदी में स्नान करने गए। चलते चलते वो प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे थे। मन तो शांत था, लेकिन थोड़ा बहुत विचलित मन हो गया था इस कारण से कि श्री राम की लीलाओं का वर्णन मैं कैसे करूं। अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे, अयोग्य समझ रहे थे, कैसे करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो ठीक उस समय उन्होंने दो क्रौंच पक्षियों को देखा जो कि संग कर रहे थे एक वृक्ष के शाखा के ऊपर बैठकर, और अपनी आंखों के सामने वाल्मीकि मुनि ने देखा और देखकर हैरान हो गए कि एक शिकारी ने अपनी तीर छोड़ी और वो तीर जाके एक पंछी को लग गई, और वो बेचारा पंछी है उनमें जो पुरुष था वो घायल होकर नीचे गिर पड़ा। बहुत ही दर्ददायक अवस्था थी, तड़प के वो मर गया और खून बह रहा था उसके शरीर से। तब जो स्त्री पक्षी थी, क्रौंच पक्षी, बहुत शोक करने लगी। शोकग्रस्त अवस्था में वो तरह तरह की आवाजें कर रही थी। शोक के द्वारा वाल्मीकि जी का हृदय भर आया, उनके मन में बहुत दुख हुआ। दुख के साथ साथ क्रोध भी हुआ, और स्वाभाविक रूप से उनके मन में, उनके मुख से एक वचन निकला जिसमें कि उन्होंने उस शिकारी को श्राप दे दिया। उनके मन से क्या निकला, मान शापनिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधीहि काममोहितम्। हे पापी शिकारी, बहुत बहुत लंबे समय तक तुम्हें शांति न मिले, ऐसे मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्योंकि इन मासूम पंछियों को तुमने मार डाला है जबकि वो एक दूसरे का संग कर रहे थे। ऐसे कहा जाता है कि जब कोई ऋषि मुनि होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तपस्या के बल से उनको तरह तरह की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि ऐसे ऋषि मुनि को क्रोध आ जाता है, किसी को श्राप दे देता है, तो फिर उसकी तपस्या की पूंजी, उसकी शक्ति की पूंजी जो है वो क्षीण हो जाती है क्रोध के कारण, श्राप देने के कारण। और वैसे भी जो एक आत्मसंयमी व्यक्ति होता है, क्रोधित नहीं होना चाहता, हर अवस्था में समभाव रखना चाहता है। तो वाल्मीकि मुनि ने जब ये कह दिया, कह तो दिया, लेकिन बाद में पछताने लगे कि अरे मैं ऐसे क्यों क्रोधित हो गया, मुझे ऐसे क्रोधित होना ठीक नहीं था, मैंने तो अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया है, फिर अचानक ये कैसे हुआ। और दूसरी बात, मेरे मुंह से ये शब्द कैसे निकले? ये तो कविता है, कविता के रूप में मेरे मुख से कुछ शब्द निकले, मैंने सोचा नहीं, स्वाभाविक रूप से निकल गए मेरे मुख से। तो पहला जो श्लोक है वो वाल्मीकि द्वारा हुआ, तो वाल्मीकि के शोक से श्लोक उत्पन्न हुआ। वैसे संस्कृत भाषा में कई छंद होते हैं तरह तरह, जैसे गायत्री छंद तो बहुत प्रसिद्ध है, और एक छंद है जिसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। अनुष्टुप छंद में अधिकतर भगवद गीता के श्लोक हैं, थोड़ी अन्य छंदों के भी हैं, लेकिन अधिकतर अनुष्टुप छंद के हैं। तो ये श्लोक जो था ये अनुष्टुप छंद का था। तो ऐसे पहले श्लोक की निर्मिति हुई, की रचना हुई, तो वाल्मीकि मुनि को समझ में नहीं आया, बड़े आश्चर्यचकित अवस्था में सोचते बैठे कि ये श्लोक मेरे मुख से निकला कैसे, कैसे ऐसी रचना, सुंदर रचना मेरे मुख से निकली। तो ऐसे गहरे विचार में वो पड़े थे, और उस समय अचानक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रकट हो गए, अपने हंस वाहन के ऊपर सवार होते। और जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बड़े आश्चर्यचकित हो गए वाल्मीकि जी, और उनके साथ उनके शिष्य थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए। वाल्मीकि मुनि बड़े हड़बड़ा गए, अरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में पधारे हैं। अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, उनको आसन दिलाया। उस समय ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनिवर, चिंतित नहीं होना, विचलित नहीं होना, जो भी हुआ है वो मेरी योजना से हुआ है, मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। तुम्हारे मुख से जो शब्द निकले हैं वो वास्तव में मेरी वाणी है, मैंने तुम्हें केवल निमित्त बनाया है ताकि तुम आगे चल के इसी तरह से एक कविता की रचना करो, और कविता का विषय होना चाहिए श्री राम। आगे चल के अब श्री रामचंद्र की कथाओं का पूरी तरह से वर्णन करना, शुरुआत से लेकर अंत तक श्री राम ने कौन से कार्य किए, साथ साथ में सीता देवी के गुण, हनुमान आदि के गुण, उनके भाइयों के गुण, समस्त लीलाओं का वर्णन करना। और ये इस ऐसे सोच में नहीं पड़ना कि कैसे मुझे ये लीलाएं पता चल जाएंगी, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं है इन लीलाओं को, नहीं, तुम्हें ये ज्ञात हो जाएंगी। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जितने भी लीलाएं श्री रामचंद्र के हैं, ज्ञान या अज्ञान, उनसे तुम परिचित भलीभांति हो जाओगे, अच्छी तरह से इन लीलाओं को तुम समझ पाओगे, जान पाओगे, बल्कि देख पाओगे। और तुम जो भी कुछ कहोगे तुम्हारे ग्रंथ में वो सत्य रहेगा, झूठ नहीं होगा। और जब तक ये सारे पर्वत, नदियां आदि रहेंगी यहां पर, तब तक तुम्हारी रामायण की कथा विद्यमान रहेगी। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो जब तक पहाड़ रहेंगे, जब तक नदियां रहेंगी, तब तक तुम्हारी रामायण की कथा यहां पे चलेगी। और जब तक ये रामायण की कथा रहेगी यहां पे पृथ्वी लोक के ऊपर, तुम चाहे स्वर्ग लोक में या पृथ्वी लोक में, जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। इस तरह ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि हर चीज तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। यही पद्धति है शास्त्रों की रचना की। शास्त्र क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की व्याख्या करते हैं शास्त्र। और धर्म क्या चीज है? भगवान की वाणी है। तो भगवान की वाणी का वर्णन यदि कोई करना चाहता है तो उसको भी भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। शास्त्रों की रचना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके लिए योग्य होना चाहिए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में रामायण की लीला करना चाहते हैं तो उनसे कहते हैं, तस्याम चरितम राज ऋषि तत्व दर्शि श्रुतम ही वर्णितम भूरी त्वया सीतापते मोहो। वो कहते हैं कि हे राजन, देखो तुमने कई बार और बार बार मोहो सीतापति श्री रामचंद्र की कथाओं का श्रवण अवश्य किया होगा, क्योंकि अनेक ऐसे तत्व दर्शी भी रहे हैं जिन्होंने कि तत्व का दर्शन किया है, जो ऋषि हैं उन्होंने ऐसे नाना प्रकार की श्री राम की कथाओं का वर्णन किया है, और तुम इनसे भलीभांति परिचित हो, बचपन से सुनते आए हो, इसलिए मैं तुम्हें केवल संक्षिप्त रूप में श्री रामचंद्र की कथाओं का वर्णन करूंगा। इसलिए ऐसे देखा जाता है कि श्रीमद् भागवत में श्री राम की कथाओं का वर्णन इतने विस्तार में सुखदेव गोस्वामी ने नहीं किया, क्योंकि वाल्मीकि जी का रामायण था पहले से। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तस्य अनुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शिभिः। तो यदि शास्त्रों की रचना करनी है किसी को, तो उन्हें सबसे पहले ऋषि होना चाहिए, एक तत्वदर्शी होना चाहिए। जब तक तत्व का दर्शन करने में हम सक्षम नहीं है, तब तक हम शास्त्रों की रचना करने में सक्षम नहीं है। इसलिए तत्वदर्शी, वाल्मीकि जैसे तत्वदर्शी जब किसी बात की रचना करते हैं तो उसे दंतकथा नहीं मानना चाहिए। व्यासदेव जी ने पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, वेदों की रचना की, और इधर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी, वाल्मीकि मुनि आदि ऐसे आत्मसंयमी, आत्म साक्षात्कारी, तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा इन कथाओं का वर्णन हुआ है, इसलिए उनको हल्का नहीं लेना चाहिए। हमें अपने मनमाने ढंग से मानसिक चिंतन के द्वारा अलग अलग तरह के अर्थ इनमें से निकालना नहीं चाहिए। जैसे है वैसे, जैसे इन मुनियों ने अपने साक्षात्कार के अनुसार इस ज्ञान को, इन लीलाओं को प्रस्तुत किया है, वैसे ही हमें सुनना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। और फिर जब ब्रह्मा जी वहां से अचानक चले गए, तो वाल्मीकि जी और उनके शिष्य फिर से विस्मित रह गए। अब देखिए, ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है और वाल्मीकि जी के शिष्य जो है आपस में एक दूसरे से बड़े आश्चर्यचकित होकर चर्चा करने लगे, अरे हमारे गुरु कितने महान हैं, हमारे गुरु को स्वयं मिलने आए व्यक्तिगत रूप से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। तो आपस में बातचीत करते रहे। ब्रह्मा जी देखिए कहाँ रहते हैं, ब्रह्मलोक में, और वो यहाँ पृथ्वी लोक में आए हमारे गुरु को दर्शन देने के लिए और उनको एक व्यक्तिगत रूप से आदेश देने के लिए, राम की कथा का वर्णन करने के लिए। तो फिर वाल्मीकि जी तमसा नदी के पास में गए, आचमन आदि करके अपने आप को ध्यान में स्थित करके बैठे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और ब्रह्मा जी भी एक आत्म साक्षात्कारी संयमी व्यक्ति हैं, उनकी भी वरदान कभी झूठ नहीं निकलते। तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही हुआ। ध्यान में स्थित वाल्मीकि जी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र की कथाएं स्वयं प्रकाशित हो गई। एक एक राम की कथा, छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजें, सारी चीजें वाल्मीकि जी के हृदय में स्फुरित हो गई। यह है तरीका आत्म साक्षात्कार का। ऐसे शास्त्रों की रचना होती है मनमाने ढंग से, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे लिख सकता है। आजकल देखा जाता है कि अनेक लोग ऐसे कहते हैं कि रामायण तो ठीक है, अच्छी कथा, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर अपनी टीका लिखेंगे और हम इसको अपना एक मानसिक चिंतन करके अपना मत जो है प्रस्तुत करेंगे, परंतु ऐसे नहीं कर सकते। टीकाएं जो होती है वो परंपरागत की जानी चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं की जाती है। तो जब वाल्मीकि जी बैठे तो इस तरह से श्री रामचंद्र के लीलाओं का दर्शन कर पा रहे थे जैसे हम किसी टीवी के सामने मत बैठे, टीवी के सामने उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम टीवी के सामने बैठे हैं तो कैसे स्पष्ट रूप से दर्शन कर सकते हैं। भले कोई चीज चल रही हो, बहुत दूर पे चल रही, दूर से चल रही है, सैकड़ों मील दूर हो वो घटना, लेकिन हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं। तो वाल्मीकि जी ने आंखों देखा हाल देखा है, जैसे श्री रामचंद्र की कथाएं चल रही हैं। देखिए भगवान काल शक्ति के परे हैं, हम सब काल शक्ति के अधीन हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कालोस्मि, कि मैं ही स्वयं काल हूं। लोकक्षय कृत प्रवृत्त है, इस काल शक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों का क्षय करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण या श्री राम के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि काल उनकी शक्ति है। हमारे लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का विचार होता है। जो भूतकाल में है, जो हो गया सो हो गया, और जो होने वाला है, जो है और जो हुआ, इसमें अंतर है, इसमें हम भेद करते हैं। ये सब काल शक्ति के द्वारा होता है, क्योंकि भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण वो सदैव आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, और क्योंकि उनके ऋषि, उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वाल्मीकि मुनि जैसे, वो भी भगवान की तरह ही आध्यात्मिक स्तर में स्थित होते हैं, इसलिए इन दोनों के लिए भगवत वर्ग और तत्वदर्शी वर्ग, इन दोनों के लिए काल कोई बंधन नहीं है। भविष्य में जो होने वाला है हम नहीं जानते हैं उसको, जो भूतकाल में हो चुका है हम भूल जाते हैं उन चीजों को, यहां तक कि वर्तमान काल में क्या चल रहा है कभी कभी वो भी नहीं जान सकते। परंतु भगवान की लीलाओं में काल की कोई सीमा नहीं है, काल का कोई बंधन नहीं है, इसलिए वाल्मीकि मुनि के लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये लीलाएं हो चुकी हैं, ये लीलाएं हो रही हैं और ये लीलाएं होने वाली हैं। आंखों के सामने वो सारे लीलाओं को देख रहे थे, मानो कि वो उनके वास्तव में आंखों के सामने हो रही हैं, उनके अंतःकरण के में वो देख रहे थे, दिव्य चक्षु के द्वारा। इन साधारण आंखों के द्वारा भगवान की लीलाओं को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को देखने का प्रयास करना चाहिए आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा। इसलिए श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं श्रुते क्षितः, कानों से देखो। कानों से कैसे देखा जा सकता है भला? हम कहेंगे भाई आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, फिर कानों से हम देख कैसे सकते हैं किसी चीज को? इसका उत्तर ये है कि कानों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान हमें उपयुक्त सही दृष्टि प्रदान करती है, जिसके द्वारा हम सही किसी चीज को समझ सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम दें, जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आप एक्सरे करवा के ले आइए या खून की जांच करा के रिपोर्ट ले आइए, तो डॉक्टर के पास वापस हम जाते हैं, एक्सरे का रिपोर्ट दिखाते हैं, खून का रिपोर्ट दिखाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये एक्सरे में क्या है, परंतु डॉक्टर तुरंत देख के कहते हैं कि आपकी ये बीमारी है, खून के रिपोर्ट को देखकर तुरंत बताते हैं कि ये बीमारी आपकी इस प्रकार से है। हम जिस रिपोर्ट को देखते हैं वो रिपोर्ट को डॉक्टर भी देखते हैं, परंतु डॉक्टर की दृष्टि में क्या है कि वो इतना सब कुछ समझ सकते हैं जो हम नहीं समझते। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है श्रवण करके, इसलिए उनको वो दृष्टि मिली है कि जब वो एक्सरे का सिर्फ फिल्म देखते हैं, रिपोर्ट देखते हैं, तो बहुत कुछ जान सकते हैं परंतु हम नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार से भगवान की विद्याओं को तत्वतः यदि हमें जानना है तो परंपरागत इनको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, और ऐसे करने से फिर भक्ति हृदय में उदित होगी। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् यश्चाष्मि तत्पतः ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशति तत् अनन्तरम्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि केवल भक्ति द्वारा ही तुम भगवान को जान सकते हो, और मुझे जानने के बाद फिर तुम मेरे पास आओगे मेरे धाम में। भक्त्या प्रनन्यया शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च तत्त्वेन प्रवेष्टुम् च परन्तप। कि हे परन्तप अर्जुन, केवल भक्ति ही है जिससे तुम मुझ भगवान को जान पाओगे, और जब मुझे जानोगे ज्ञातुम् तब मुझे देख पाओगे द्रष्टुम्, और जब देखोगे द्रष्टुम् फिर प्रवेष्टुम्, फिर मेरे धाम में तुम प्रवेश कर पाओगे, मेरी लीलाओं में तुम प्रवेश कर पाओगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमें लीलाओं को समझना है, इसे लीला प्रवेश कहते हैं। लीला में कैसे प्रवेश किया जाता है? श्रवण के द्वारा। श्रवण के द्वारा वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, मन उस प्रकार से मग्न हो जाता है भगवान और उनकी कथाओं में, तब हम कहते हैं कि हम प्रविष्ट हो गए हैं इन लीलाओं में। तो वाल्मीकि मुनि ने अपने आंखों के सामने ये सारी लीलाएं देख ली, और फिर उन्होंने रचना की। याद रखिएगा कि ये त्रेता युग की बात है, और त्रेता युग में लोगों की स्मृति शक्ति इतनी तीव्र थी कि वहां लिखित रूप में किसी भी चीज को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लोग उस समय श्रुति धर हुआ करते थे। श्रुति धर का क्या मतलब है? कि जो एक बार सुन ले और उसको अपने मन में पकड़ ले, धारण कर ले, धर। तो सुनने से जो धारण कर ले अपने मन में, वो है श्रुति धर। आजकल कलयुग में स्मृति शक्ति इतनी क्षीण हो गई है कि हमें लिखना पड़ता है, याद नहीं रख सकते हैं, और आजकल हमारे कैलकुलेटर कंप्यूटर के द्वारा और भी स्मृति शक्ति खराब होती जा रही है। केवल बटन दबाने से अब सब काम हो जाते हैं, तो हम दिमाग को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। 13x15 यदि करना हो तो कष्ट नहीं देंगे दिमाग को कि 13x15 कितना है, सीधा कैलकुलेटर उठा, भले कितना कष्ट लगे, ज्यादा समय लगेगा, कैलकुलेटर ढूंढो फिर बटन दबाओ, लेकिन फिर भी दिमाग को कष्ट नहीं देते हैं, और इसलिए स्मृति शक्ति और भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन त्रेता युग में हर एक व्यक्ति श्रुति धर था, इसलिए वहां कागज आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और इसलिए वैदिक ज्ञान इसी प्रकार से परंपरागत आया करता था। गुरु अपने शिष्यों से कहते थे, बारंबार दोहराने पर शिष्यगण याद रखते थे, फिर आगे चल के वो ज्ञान दूसरों को देते थे। ऐसे लाखों लाखों वर्षों से ज्ञान चलते आया। केवल द्वापर के अंत में व्यासदेव जी ने देखा कि कलयुग में लोगों की परिस्थिति बहुत विकट होने वाली है, स्मृति शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो लिखित रूप में अब ज्ञान को वेदों को प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। महाभारत की रचना की को लिखने के लिए फिर उन्होंने गणेश जी की सेवा ली। तो खैर रचना तो कर ली वाल्मीकि मुनि ने, लेकिन अब ढूंढ रहे थे ऐसे कोई योग्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को जो कि इसको कंटेस्ट कर लें, और जिनका स्वभाव भी ऐसे हो, जिनके अंदर ऐसे सद्गुण भी हो, जिनकी भाषा भी बहुत मधुर हो, वाणी अच्छी हो, जो कि इसको कंटेस्ट करके जगह जगह जाके प्रचार प्रसार करें। और जैसे ही यह विचार वाल्मीक जी के मन में आया, उसी समय लव और कुश ये दो वाल्मीक जी के सामने आए। अब आपको पता है कि अयोध्या लौटने के बाद, वनवास के बाद, एक बार श्री रामचंद्र ने सीता देवी को पुनः वन में भेज दिया। इसके पीछे क्या कारण था वो आगे चल के आने वाले दिनों में कभी देखेंगे, परंतु सीता देवी को ले जाना पड़ा लक्ष्मण को। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया। लक्ष्मण को नहीं भेजना चाहते थे सीता देवी को, परंतु श्री राम बड़े भाई थे, क्या करते, आदेश का पालन करना था। तो बहुत भारी हृदय से, बड़े संकोच से, न चाहते हुए श्री लक्ष्मण जी ने सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। इसके बाद लक्ष्मण जी ने ठाना कि अब हम कभी छोटे भाई नहीं बनेंगे, अगली बार आएंगे तो बड़े भाई बनकर आएंगे। इसलिए अगले बार वो बलराम बन के आए और श्री राम कृष्ण बन के आए। बहुत हो गया छोटा भाई होना तो बहुत आदेश का पालन करना पड़ता है, लेकिन जब बड़े भाई बन के आएंगे तो फिर उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो खैर, तो वहां वाल्मीकि जी के आश्रय में सीता देवी रही। उस समय वो गर्भवती थी और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ। श्री राम ने अपने दो पुत्रों को कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनका जन्म तो सीता देवी के दोबारा वनवास में जाने के बाद ही हुआ। और वाल्मीकि जी के चरणों में लव कुश ने परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। बहुत सज्जन थे, हर दृष्टि से निपुण और प्रवीण थे, और प्रतिदिन प्रभात काल में वो वाल्मीकि जी के सामने आते थे, प्रणाम करते थे उनको। तो हर दिन की तरह इस समय भी वो आए, जिस समय की वाल्मीकि मुनि सोच रहे थे कि किनको मैं ये सिखाऊं ताकि वो इस रामायण का पाठ सब जगह जाके करे। और जैसे ही उन्होंने लव कुश को देखा तो उनको मन में विचार आया कि इन्हीं को मुझे सिखाना है। फिर उनको बिठाया और सारी रामायण जो है उन्होंने सुनाई उनको। और लव और कुश ने सारी रामायण 24,000 श्लोक जो है कंठस्थ कर लिए। न उनका कोई कंप्यूटर था, न और कोई था उनके पास, स्वाभाविक रूप से उन्होंने कंठस्थ कर लिया। और गंधर्व विद्या में, संगीत में बहुत विशारद थे, बहुत मधुर ढंग से इन श्लोकों की रचना करने में वो काबिल थे। और फिर वो जगह जगह गए और पहली बार उन्होंने ब्राह्मणों की और अन्य पुण्यवान लोगों की सभा में रामायण की कथा की। सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। कोई जानते नहीं थे उस समय कि ये दो लड़के हैं कौन। और फिर श्री राम के कानों तक खबर पहुंची। जब एक बार श्री राम अयोध्या में कहीं जा रहे थे, उन्होंने सुना, तो इन दो लड़कों के पास गए, देखा कि ये ब्राह्मणों के कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर वाणी है इनकी, लेकिन दिखने में तो ये क्षत्रियों की तरह दिखते हैं, लेकिन हैं कौन ये उनको पता नहीं था। तो फिर उन्होंने उन लड़कों को निवेदन किया कि आओ मेरे दरबार में और दरबार में राम कथा करना। फिर लव और कुश आए और उन्होंने राम कथा श्री राम के दरबार में की। बात को आगे बढ़ाने के पहले और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री राम ने सारे पृथ्वी का राज लव और कुश को सौंप दिया था। कुश को उन्होंने वो प्रांत दिया था जो आजकल अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, इसलिए शास्त्रों में अफ्रीका को कुश द्वीप कहते हैं। तो एक सन्यासी थे, वो एक बार, ये 30-40 साल पहले की बात है, जहां वहां पे एक जो राष्ट्रपति है जो भी है वो थे इथियोपिया नाम के देश में, उनका नाम था हेली सिलेसी। तो ये सन्यासी जाकर उनसे मिले और उन्होंने सोचा कि हमारे देश से कोई ग्रंथ उनको भेंट दे देना चाहिए, तो उन्हें रामायण का भेंट दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो ईसाई धर्म के हैं, ये शायद रामायण के बारे में नहीं जानते होंगे, तो उनको दे दी। उन्होंने कहा मैं तो ये जानता हूं अच्छी तरह से। उन्होंने कहा आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा वी आर कुशाइट्स, हम लोग कुशाइट हैं, मतलब कुश के अनुयायी हैं, इसलिए हम अच्छी तरह से रामायण जानते हैं। ये बड़े आश्चर्यचकित हो गए सन्यासी इस बात को सुनकर। और वास्तव में आप देखेंगे कि सारे अफ्रीका, हमने एक अफ्रीकन भक्त से पूछा था कि हमने ऐसे ऐसे पढ़ा है, तो कहते कि हाँ हमारे देश में भी सारे अफ्रीका में इतिहास की किताबों में ऐसे पढ़ाया जाता है। अभी क्या खास पढ़ाया जाता है हमें पता नहीं, लेकिन लोग जानते हैं, कुश ये शब्द से परिचित है अफ्रीका में रहने वाले लोग। तो खैर ऐसे आश्चर्य की बातें हैं, यदि आजकल के इतिहास और भूगोल के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी हम जान सकते हैं। तो लव कुश आए, दोनों श्री रामचंद्र के दरबार में रामायण की कथा करने लगे। श्री राम ने अपने भाइयों को भी बुलाया कि आओ आके आप भी सुन लो, और दरबार में उनके मंत्रीगण भी थे और बहुत सारे लोग थे, नगर के प्रसिद्ध नागरिक भी थे, और सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते गए, इतने मग्न हुए कि किसी को पता ही नहीं चला कि कितने घंटे बीत गए हैं। श्री रामचंद्र भी अपने आसन पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, नीचे आए, सबके बीच में बैठे, अपनी ही कथा में रमण कर रहे थे। तो श्री राम रमण कर रहे थे राम कथा। तो फिर कथा जो होती है फिर शुरू होती है, वो लव और कुश द्वारा कही गई कहानी है फिर। और रामायण की कथा यहां से शुरू होती है कि एक नगर था जिसका नाम था अयोध्या, ऐसे शुरू होती है कथा फिर। और इसकी स्थापना किसने की? स्थापना की स्वयं मनु ने, सूर्यदेव के पुत्र थे, वैवस्वान जी के पुत्र थे वैवस्वत मनु, जिनके बारे में आपने अवश्य सुना होगा भगवत गीता में, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ये गीता का ज्ञान सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु अर्थात वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्धदेव, उनको दिया था। श्राद्धदेव वैवस्वत मनु ने यही ज्ञान अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरागत चलते आया। तो इक्ष्वाकु की परंपरा ये भी सूर्यवंशी परंपरा है। तो वैवस्वत मनु ने इस शहर की स्थापना की जिसका नाम था अयोध्या, अयोध्या। वैसे व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो इसका अर्थ है कि जिसके विरुद्ध युद्ध ही नहीं किया जा सकता, अर्थात वो इतना सुरक्षित स्थान है, इतना मजबूत है कि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर आक्रमण करके विजय नहीं प्राप्त कर सकता, हार उसके लिए निश्चित है। तो ऐसे स्थान की स्थापना की, ऐसे एक नगर की स्थापना की मनु ने, इसका नाम था अयोध्या। और इसमें इक्ष्वाकु राजा आए और उनके फिर वंशज रहने लगे, राज्य करने लगे, और काफी समय बीतता गया। ऐसे वंशावली का वर्णन भी लव और कुश ने किया। और फिर पहुंचे राजा दशरथ की ओर। राजा दशरथ वो तो श्री रामचंद्र के पिता थे, दशरथ महाराज के पिता थे अजय, उनके पिता थे रघु, दीर्घ बाहु, आगे फिर खटवांग राजा इत्यादि, ये सब राज ऋषियों की परंपरा। सूर्य वंश हो, चंद्र वंश हो, पहले के जमाने में राज ऋषि हुआ करते थे, तो फिर दशरथ महाराज के राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। दशरथ महाराज से बहुत प्रेम करते थे। दशरथ महाराज धर्मपरायण राजा थे और सब कुछ उनके राज्य में ठीक चल रहा था। धर्म के अनुसार सारे विधियों का पालन हो रहा था। सब कुछ होते हुए भी दशरथ महाराज के हृदय में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी आयु इतने हो जाने पर भी 60,000 वर्ष की आयु थी, उनका कोई संतान नहीं था, तो आगे राज्य कौन संभालेगा। और विशेष करके राजा के लिए तो बहुत एक चिंता की बात होती है। तो फिर बहुत चिंतन करने के बाद उन्होंने अपने सहायकों को, अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके सामने ये कहा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे बाद में राज्य कौन चलाएगा। इसलिए मैंने काफी विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और ताकि मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति हो। तो वशिष्ठ, वामदेव आदि जितने भी बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि वहां पे थे, वो सब राजा दशरथ के बातों से सहमत हुए कि बहुत अच्छा विचार है आपका, अवश्य हमें ऐसे करना चाहिए। उधर उनके मुख्यमंत्री सुमंत्र भी थे, तो सुमंत्र ने उनसे कहा कि मुझे याद है कई वर्ष पूर्व चतुष्कोण कुमारों में से जो सनत कुमार हैं, उन्होंने एक कथा की थी और मैं उस कथा में था, मैंने कथा का श्रवण किया। इस कथा में उन्होंने भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी ये थी कि राजा दशरथ के आगे चल के चार पुत्र होंगे जो बहुत ही योग्य वीरवान होंगे, आदर्श पुत्र होंगे। इसलिए आप हौसला मत खोइए। तो आइए सुनिए मुझसे कि सनत कुमार प्रभु सनत कुमार ने क्या व्याख्या की थी। तो व्याख्या आरंभ हुई। कथा यह हुई कि ऋषि श्रृंग नाम के एक ऋषि थे, उनके पिता का नाम था विभांडक ऋषि, लेकिन वो दोनों वन में रहते थे। अब विभांडक ऋषि ने सोचा कि मैं मेरे पुत्र को वन में ले जाऊंगा और बहुत ही एकांत स्थान में उसको पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, शिक्षा दूंगा, यज्ञ आदि में संपन्न कराऊंगा, उसे एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति बनाऊंगा। परंतु यदि ये सब होना है तो मैं चाहता हूं कि वो कहीं माया जाल में फंस न जाए, संसार के समस्याओं में पड़ ना जाए, इसलिए मैं उसे सारे लोगों से दूर रखूंगा, एक भी व्यक्ति से मिलने नहीं दूंगा उसे। तो बहुत ही एकांत स्थान में विभांडक ने अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को बड़ा किया। अपने पिता के अलावा ऋषि ने किसी और को मनुष्य को देखा ही नहीं था और अब तरुण अवस्था प्राप्त हो गई थी। उधर महाराज रोमपाद जो कि अंग देश के राजा थे, वो बड़े चिंतित हो गए थे। चिंता का कारण ये था कि देश में सारे राज में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और प्रजा त्राही त्राही मचाने कहने लगी। बहुत कष्टदायक अवस्था थी सारी प्रजा की। तो सारे ब्राह्मणों को बुलाया महाराज रोमपाद ने और कहा कि मैं जानता हूं कि आज जो भी राज्य की दशा है वो मेरे कोई पूर्वकृत पाप के कारण होगा, क्योंकि ऐसे शास्त्र में बताया जाता है कि जो देश के नेता हैं, जो राजा होते हैं, यदि वो पाप होते हैं तो फिर देश में कष्ट होता है। जैसे हम द्वारका में भी देखते हैं कि एक ब्राह्मण का जब पुत्र हुआ और जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हुई, तो ये ब्राह्मण सीधे राजा उग्रसेन के पास आए द्वारका में दरबार में और आरोप लगाया उग्रसेन के ऊपर कि ये आपके कारण हुआ है। यदि आप धर्मपरायण राजा होते तो ऐसी अकाल मृत्यु इस बच्चे की न होती। वैसे तो बच्चे की मृत्यु माता पिता के पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ऐसे कुछ हो जाता है इसका मतलब है कि राजा का दोष है, तो आपका इसमें दोष है। तो ऐसे वैदिक सभ्यता के अनुसार माना जाता था कि राजा को बहुत ही आदर्श होना चाहिए, बहुत पुण्यवान, बहुत धार्मिक होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए भगवान की। इसलिए राजा को नार देव कहते हैं शास्त्रों में। नर रूप में देव या भगवान का प्रतिनिधि है। बल्कि थोड़े वर्ष पूर्व तक भी नेपाल में राजा को ऐसे ही मानते थे। आजकल साम्यवाद राज्य आदि आ गया है तो समय काफी बदल गया है। पिछले 20-25 साल के पहले की बात है, ज्यादा समय तो पहले की नहीं। तो वैदिक काल में तो ऐसे ही माना जाता था कि राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान तुल्य है। और यदि राजा इस काबिल नहीं था, यदि वो धर्मपरायण नहीं हुआ करता था, यदि वो दुष्ट हुआ करता था, तो ब्राह्मण जो है वो फिर कोई हस्तक्षेप कर देते, जैसे कि राजा बेन के साथ में हुआ। उन्होंने अवसर दिया राजा बेन को कि राज्य संभालो, परंतु बेन बड़ा दुष्ट निकला और इसलिए ब्राह्मणों ने हुंकार मात्र से बेन की हत्या कर दी। तो राजा रोमपाद समझते थे कि इसमें भी मेरा कोई दोष होगा, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, तो अभी मेरा कोई कसूर है इसमें, क्या किया जा सकता है। ब्राह्मणों को बुलाया कि किस तरह की यज्ञ करने चाहिए, क्या उपाय निकालना चाहिए इसके लिए। तो ब्राह्मणों ने बताया विचार विमर्श करके आपस में कि हे राजन, इसके लिए एक ही उपाय है। विभांडक मुनि के जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंग ऋषि, उनको आप यहां पर ले आइए और जैसे ही वो आपके राज में कदम रखेंगे वैसे ही वर्षा होगी और आपके राज में जो भी अकाल आदि है, सूखा है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए समस्या ऐसी है कि भांडक मुनि जो है अपने पुत्र को नहीं छोड़ेंगे। तो राजा सोचने लगे कि क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपने राज्य के थोड़े तरुणियों को बुलाया और कहा कि सारे प्रजा के हित के लिए, राज्य के कल्याण के लिए आपको यह काम करना होगा। तो आप जाना वहां पे ऋषि श्रृंग ऋषि को आकर्षित करके, प्रभावित करके यहां ले आना। वैसे रोमपाद महाराज की एक कन्या थी, पुत्री थी, जिनका नाम था शांता। वैसे वास्तव में शांता तो महाराज दशरथ की पुत्री थी, लेकिन महाराज रोमपाद के मित्र थे दशरथ महाराज। रोमपाद महाराज के निवेदन पर दशरथ महाराज ने पुत्री सौंप दी रोमपाद महाराज को। तो अब रोमपाद महाराज चाहते थे कि ऋषि श्रृंग ऋषि को यहां बुलवाकर अपने पुत्री शांता से विवाह कराने। तो ये महिलाएं जो है, तरुणियां जो है, वो गई वहां पे। उन्होंने अपना अपने तंबू आदि बना दिए वहां दूर पे, आश्रम के दूर से, और वहां पे प्रतीक्षा करती रही। और अचानक एक दिन वहां पर चलते चलते भ्रमण करते करते वन में ऋषि श्रृंग ऋषि वहां पर पहुंच गए। कभी पहले दूसरे व्यक्ति को देखा नहीं था, महिलाओं की बात तो दूर है, और केवल अपने पिता की बातें सुनी थी। महिलाओं के मधुर वाणी से, उनके सुंदर रूप से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने उनको मीठी बातों से प्रभावित किया। तो ऋषि श्रृंग ऋषि ने कहा कि आइए, आप अतिथि हैं मेरे आश्रम में, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आश्रमों को ले गए। फिर आश्रमों के पास क्या था, कंदमूल आदि थे, वो खिलाए। फिर इन महिलाओं ने साथ में बहुत सारे मिष्ठान आदि लाए थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मीठे पदार्थ लाए थे, वो भी उनको खिलाए। अब ऋषि श्रृंग ऋषि बेचारे ने सोचा कि ये भी कोई नए तरह के कंदमूल हैं, कभी उन्होंने कुछ और खाया ही नहीं था, जंगल के बाहर गए नहीं थे, तो ये सब उन्होंने देखा कि क्या बहुत स्वादिष्ट है और इनकी बोली भी बहुत मधुर है। और फिर वो महिलाएं चली गई और उस घटना के बाद ऋषि जो है उनको भूल नहीं पाए और उनके हृदय में वासनाएं उत्पन्न हो गई और फिर से उनको ढूंढते ढूंढते वापस उनके पास गए। वहां जब गए तो और उनका स्वागत किया उन्होंने और खेला कहा कि ये वास्तव में हमारा घर नहीं है, आप हमारे साथ में चलिए। तो वो तैयार हुए और शीघ्र ही वहां से वो ऋषि को ले गए, इसके पहले कि भांडक मुनि वहां पर आए और उनको देखे और श्राप दें। तो घबरा घबरा कर किसी न किसी तरह से ऋषि को ले गए और जैसे कि ब्राह्मण ने कहा था, जैसे ही ऋषि ने कदम रखा अंग देश में, वर्षा होने लगी और अकाल दूर हो गया। फिर ले आकर शांता से विवाह कराया रघुपाद महाराज ने और ऋषि जो कि अपने दामाद थे उनसे जाकर निवेदन किया कि आपसे एक हम वरदान चाहते हैं। क्या वरदान है? कि ऐसे वरदान दीजिए कि आपके पिता विभांडक मुनि के श्राप से हम बचें, कि जैसे ही आपके पिता को पता चलेगा कि क्या हुआ है वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे, तो हम सुरक्षा की याचना करते हैं आपसे। तब ऋषि ने कहा तथास्तु, तो सुरक्षित रहे और ऋषि वहां पर रहे उनके साथ में, शांता से विवाह भी हो गया। उधर दशरथ महाराज को खबर पहुंची और ऐसे याद रखिए सुमंत कह रहे हैं दशरथ महाराज से कि ऐसे भविष्यवाणी हुई है कि आप वहां जाओगे और वहां जाके ऋषि को ले आके यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ आदि संपन्न करोगे जिसके द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दशरथ महाराज ने कहा ठीक है अभी हम जाएंगे, भविष्यवाणी भी हुई है। तो अपने मित्र रघुपाद महाराज के यहाँ गए, रघुपाद महाराज ने बड़े आनंद से स्वागत किया अपने मित्र का। कई दिनों तक रहने के बाद फिर दशरथ महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की, बड़े खुशी से उन्होंने ऋषि को भेज दिया उनके साथ में और ऋषि को वापस ले आए दशरथ महाराज अयोध्या में। अयोध्या के बाहर एक विशाल यज्ञ स्थली की स्थापना की गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आजकल के जमाने में तो ऐसे संभव ही नहीं है। एक विशाल शहर का निर्माण किया गया और पृथ्वी के कोने कोने से क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र तरह तरह के लोग आए थे, राजाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जो बड़े बड़े वैश्य थे उनके लिए भी व्यवस्था। केवल एक यज्ञ के लिए एक विशाल शहर बनाया गया था और फिर वहां ऋषि आए। फिर दशरथ महाराज ने उसे निवेदन किया कि इस अश्वमेध यज्ञ का नेतृत्व आप कृपा करके संभालें। उन्होंने स्वीकार कर दिया और अन्य ब्राह्मणों की सहायता से ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। जैसा कि आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व या घोड़े को छोड़ा जाता है और घोड़ा जहां चाहे वहां भ्रमण करते रहता है और जिस राज्य में वो प्रवेश करता है तो उस राज्य के राजा को घोड़ा घोड़े को भेजने वाले राजा के अधीन होना पड़ता है या तो फिर उनका सामना करना पड़ता है। समय हो गया प्रवचन की दिशा तो यदि कोई राजा अधीन नहीं होना चाहता उस दूसरे राजा का तो उसे घोड़े को पकड़ना पड़ता है और घोड़े के साथ में जो सैनिक है उनसे युद्ध करना पड़ता है। परंतु दशरथ महाराज के घोड़े के सामने कोई सामने नहीं आया और पूरे एक साल के बाद घूमने के बाद घोड़ा लौट के आया और फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। बड़े प्रसन्न चित्त से, हल्के हृदय से, हर्षित अवस्था में दशरथ महाराज ने यज्ञ के बाद सारे जो सारी पृथ्वी है ब्राह्मणों को दे दी, अब दान में दे दिया, क्योंकि क्षत्रियों का कर्तव्य होता है दान देना। और बड़े धर्मपरायण थे दशरथ महाराज, वो अच्छी तरह से जानते थे कि ब्राह्मणों का स्वागत और सत्कार कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने दान दे दी सारी पृथ्वी, ये मेरी पृथ्वी, मेरा राज्य है, ये लीजिए हम आपको दान दे देते हैं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन हम इस दान को वापस आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं संभाल सकते ये, हम तो ब्राह्मण हैं, वेद पठन आदि में हमारी रुचि है, यज्ञ संपन्न करने में आदि, तो हम राज्य क्या संभाल सकेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमारा काम नहीं है, हमें गाय आदि को दान में दीजिए, हम संतुष्ट रहेंगे। तो दशरथ महाराज ने फिर राज्य स्वीकार कर ली और राज्य करना फिर से स्वीकार शुरू कर दिया। देखिए आजकल के हिसाब से ऐसे कोई दान देगा, और किसी को ऐसे दान मिला तो क्या वो लौटाएगा? तो खैर ये त्रेता युग का समय था, दशरथ महाराज थे, फिर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया। उसके बाद उन्होंने सोचा, ऋषि सिंह ऋषि ने कहा कि और आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आपको पुत्रेष्टि यज्ञ भी संपन्न करना होगा। फिर पुत्रेष्टि यज्ञ भी हुआ, और पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद फिर धीरे धीरे से और कई घटनाएं हुई, और उनके बाद फिर भगवान का आविर्भाव हुआ। लेकिन ये घटनाएं कौन सी थी और उनका जन्म, भगवान का आविर्भाव या प्राकट्य किस प्रकार से हुआ और इसकी आगे कौन सी घटनाएं हुई, यदि आपको जानना है सुनना है तो आप को यहाँ कल शाम को 7 बजे आना होगा। अब 9:10 बज गए हैं, आपने ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण किया, आपके हम बहुत आभारी हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।